ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को हमारी जिम्मेदारी याद दिलाई है। क्या है हम बच्चों, हम ब्राह्मण बच्चों की जिम्मेदारी? बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को दी है, और वो संगम युग पर ही जिम्मेदारी मिलती है, सारे कल्प में नहीं मिलती है। कौन सी जिम्मेदारी है? बाबा कहते हैं, सबको बाप का पैगाम देना, ये तुम्हारी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिए हैं। जिम्मेदारी अनुसार टाइटल मिलता है ना, तो पहला टाइटल क्या दिया है? तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। ईश्वरीय मिशन माना ईश्वर का संदेश सबको सुनाने वाले। इसीलिए तुम्हें यह कर्तव्य करना है, सबको बाबा का संदेश देकर बाबा का बनाना है। वो मिशन जो होते क्रिश्चियन मिशन या कोई भी, तो वो अपने जैसा उनको बनाते हैं। तो तुम बच्चों को बाबा का सब परिचय देकर उनको भी ब्राह्मण बनाना है। फिर दूसरा टाइटल क्या बाबा ने दिया है? तुम लाइट हाउस हो। लाइट हाउस का काम क्या होता है? जो भटक गए हैं ना जहाज, वो लाइट हाउस का इंतजार करते हैं। वो लाइट आती है वहां से, उनको सर्च लाइट मिलती है, तो जैसे कि उनको रास्ता मिल जाता है। तो तुमको लाइट हाउस बन करके सबको रास्ता बताना है, क्योंकि सब आत्माएं भटक गई है। तो भिन्न भिन्न रूप से बाबा हमें सेवा करने के कई तरीके बताते। तीसरी बात बाबा ने क्या कही है? शिव बाबा ने तो फाउंडेशन लगा दिया है नई दुनिया का। अब कलम तो लगा दिया, लेकिन फिर जैसे कलम में पत्ते निकलते हैं ना, तो वो पत्तों को कौन पैदा करेगा? तो बाबा कहते तुमको पत्ते निकालने हैं। वो पत्ते जुड़ते जाएंगे इस नए सैपलिंग में, नए कलम में। तो पत्ते निकालने का काम तुमको करना है। बाबा ने तो सैपलिंग लगा दी, कलम लगा दी। तो आज बाबा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है हम बच्चों को। हम कितना इस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, निभा रहे हैं, वो फिर हर एक अपने आप से पूछे। और दूसरा प्रश्न है, कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हम क्या पुरुषार्थ करें, कैसे आगे बढ़े, क्या करें, हाँ क्या करें, बच्चे पूछते हैं। तो बाबा ने कहा है, तुम्हारी ये रिटर्न जर्नी है, तुम वापस घर जा रहे हो, तो जिस स्थिति में तुम घर से आए थे, इतने शुद्ध पवित्र पावन सतो प्रधान, उसी स्थिति में वापस जाना है। ये तुम्हारा बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि रिटर्न जर्नी है, वापस जाना है। हाँ, जैसे कोई बहुत बड़ी यात्रा पर गया हो, अब उसको वापस जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सब समेटना पड़ेगा ना, सब समेटना पड़ेगा, क्योंकि भी वापस जाना है। तो रिटर्न जर्नी माना वापस जाने की यात्रा है, घर जाना है। और किस स्थिति में जाना है? उसी स्थिति में जिस स्थिति में आए थे। तो देखना है अपने आप को, मैं कहाँ तक पहुंचा हूं? सतो प्रधान तक पहुंचना है, तो कहाँ तक पहुंचा हूं? अभी तक वो तमो स्थिति है, या रजो तक पहुंचा हूं, सतो तक पहुंचा हूं? सतो प्रधान पहुंचना माना एकदम कर्मातीत। तो कहाँ तक मैं पहुंचा हूं? वो बाबा कहते हर एक अपने आप को देखे, अपने से भेंट करे, दूसरों से भेंट नहीं करे, या दूसरों को नहीं देखे, तो आज बाबा जी ये बड़ी जिम्मेदारी दी है आत्मा उन्नति के लिए भी और सेवा के लिए भी। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 13/12/2025 है। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है, इसीलिए हर एक को वर्षे का अधिकार है। फिर चाहे मुक्ति का वर्षा ले, चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा ले, तो तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। प्रश्न है, कर्म इंद्रियों की चंचलता कब समाप्त होगी? बच्चे पूछते हैं ना बाबा से, बाबा ये कर्म इंद्रियां बहुत चंचल है, माया बहुत हमें तंग करती है। तो फिर बाबा से पूछते हैं, ये कर्म इंद्रियों की चंचलता कब समाप्त होगी? तो उत्तर है बाबा का, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, त्रेता युग की जो स्थिति होगी ना हमारी, उस स्थिति तक पहुंचेगी। अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी, चलो सतो प्रधान न भी सही पर सतो, त्रेता युग की स्थिति है सतो, तो आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी, तब कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अगर अभी तक चंचलता है कर्म इंद्रियों की, माना अभी तक तमोस्थित है, या चलो रजो तक पहुंचे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर जब सतो तक बने इसका मतलब कर्म इंद्रियों की चंचलता अब बंद हो गई। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, वापस जा रहे हो घर, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। और उसके लिए बाबा युक्ति क्या बताते हैं, कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना, क्योंकि कर्म इंद्रियां क्या क्या करती रहती है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पंच इंद्रियों से ही तो होते हैं विकार। तो कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए, क्योंकि छिपाकर ही किया जाता है। जब कोई ऐसा गलत काम होता है तो छिपाकर ही करते ना, कोई दिखाकर थोड़ी करते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है, कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना है जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। दवाई तो मिल रही है पर डॉक्टर साथ में परहेज भी बताता है। अब दवाई तो खा रहे हैं, ज्ञान योग चलो रोज कर भी रहे हैं, परंतु जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बताई है वो उन पर नहीं चलते हैं, तो फिर कैसे हम कर्म इंद्रियों को जीत सकेंगे? तो बाबा कहते हैं, अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर भी चलते रहो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य है तुम्हारे जीवन में। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, न सिर्फ तुम बच्चों को पर जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली है वो जानते हैं। हाँ, जो थोड़े बहुत बाबा के सामने तो थोड़े बहुत बैठे थे, लेकिन बाबा तो सब बच्चों को देखते हैं, वो जानते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं, तो पहले तुम शूद्र थे फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है, दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं है, सिर्फ गायन है, वो भी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन वर्णों का गायन है। ब्राह्मण भी उस वर्णों में आते हैं, उनका पता ही नहीं है, चार वर्ण नहीं बताते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दुनिया में वर्णों का भी समझ को भी वर्ण समझते नहीं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, ये बात राइट है? ब्राह्मण वर्ण के हो फिर तुम देवता वर्ण के बनेंगे, ये बात राइट है? जज योरसेल्फ, अपने आप में अपने आप को देखो, मेरी स्थिति क्या है, ब्राह्मण की स्थिति है या अभी तक शूद्रपना है? तो ये बात राइट है? जज योरसेल्फ, हमारी बात सुनो और भेंट करो। बाबा जो सुनाते हैं वो सुनो और फिर अपने साथ भेंट करो, जो बाबा कहते हैं वो राइट है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं उनकी भेंट करो कि राइट क्या है। ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं, विराट रूप में केवल देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही दिखाए हैं। तो गीता में कहाँ ब्राह्मणों का वर्णन नहीं आता है, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, पर ब्राह्मण की बात नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, देखा है सभी ने, बहनों ने देखा है विराट रूप का चित्र अपना जो बना हुआ है म्यूजियम में है, वहां जाकर के देखना, म्यूजियम में विराट रूप का चित्र दूसरे कमरे में बना हुआ है, विष्णु का विराट रूप और उसमें ब्राह्मण दिखाए हैं चोटी ऊपर। तो बाबा कहते हैं बाकी तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है, बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को जो इतने हथियार बैठ दिए हैं वो सब है रॉन्ग। उन देवियों ने कोई हिंसक युद्ध तो की नहीं है, तो बाबा कहते हैं वो फिर रॉन्ग हो जाते इतने हिंसक वो हथियार दिखाए। ये भक्ति मार्ग के चित्र हैं, इन आंखों से सब देखते हैं परंतु समझते नहीं है, भले उन चित्रों को देखते हैं लेकिन समझते नहीं है। कोई के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है, अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अब तुमको क्या करना है, बाबा तो हम बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को तो बाबा नहीं समझाते हैं, तो बाबा हमको समझाते हैं, फिर हमारा फर्ज क्या है? तो जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे ना, जरूर बाप के मददगार चाहिए, इसलिए तुम्हारी है ये ईश्वरीय मिशन। तुम भगवान के मददगार बन करके ईश्वर का ये कार्य कर रहे हो, तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो, वो हम आत्माओं का बेहद का बाप है। ईश्वरीय मिशन में सबसे पहला काम क्या करते हो, बाप का परिचय देते हो और कहते हो वो हमारा बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। तो जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है ना, लौकिक बाप को बाबा कहते तुम कितना याद करते हो, हर वक्त लौकिक बाप याद रहता है, उनसे जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। अब ये भेद करो अपने अंदर, मैं लौकिक बाप को कितना याद करता हूँ और पारलौकिक बाप को कितना याद करता हूँ, तो पारलौकिक बाप को ज्यादा याद करना चाहिए। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, पर बेहद का बाप तो बेहद का सुख देते हैं। तो जास्ती याद किसको करना चाहिए, हाँ माताएं, बेहद के बाप को। ये अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है, अभी तुम जानते हो हमारे तीन बाप हैं, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं, इस बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा बाबा को तो कोई विरले ही जानते हैं, मंदिर भी इतने नहीं है। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसको भी पता नहीं है, उनका ऑक्यूपेशन भी तो जानना चाहिए ना। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन क्या है? जगत पिता तो लिख दिया, पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है तो वहां ऊपर से लिखा हुआ है जगत पिता ब्रह्मा। अब जगत पिता कैसे है, वो ब्रह्मा कब आकर के जगत को रचा, क्या कर किया, बाबा कहते वो तो कुछ भी नहीं जानते। तो इस बाप को कोई भी नहीं जानते ब्रह्मा को, ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसको भी पता नहीं है, उनका ऑक्यूपेशन भी तो जानना चाहिए ना। शिव की श्री कृष्ण की तो महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ। निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, जिससे अमृत दे। इसलिए फिर शिव पर जो अभिषेक करते हैं, जो कुछ भी जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जो भी, फिर वो कहाँ से निकलता है मंदिर में, गौमुख से। हर शिव के मंदिर में गौमुख भी होगा बाहर, तो वहां से बाहर निकल जाता है, तो गौमुख है। तो बाबा कहते हैं बाकी ब्रह्म निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, जिससे अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं याद कर सकते, यथार्थ रीति जानते ही नहीं है। अभी तुम जानते हो, समझते हो, शिव बाबा का रथ ये है। ब्रह्मा को भी जानते हो, शिव बाबा को भी जानते हो, ये रथ है ब्रह्मा शिव बाबा का। रथ को भी फिर श्रृंगार करते हैं ना, रथ को श्रृंगार करते हैं। हमारे चंद्रहार दादा थे, वो बहुत बाबा को स्नान भी करवाते थे, बुजुर्ग थे बाबा तो स्नान भी करवाते थे, फिर उनको कपड़े पहनाना, ये करना, तो उनको बहुत नशा था। मैं शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहा हूँ, चंद्रराज दादा कहते थे। तो बाबा कहते हैं रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो, तुम सभी की बढ़ाई करते हो, सबकी बढ़ाई करते हो, सब देवताओं की बढ़ाई तो करते हैं ना, बोलते हो कि तुम ही ये देवता थे, उनकी बढ़ाई करके फिर कहेंगे तुम ही ये देवता थे। फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए योग चाहिए, परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। समझ जाए तो क्या हो जाए, बड़ा मुश्किल समझते हैं, परंतु समझ जाए तो क्या हो जाए, खुशी का पारा चढ़े। अरे वाह, जिस भगवान को हम ढूंढ रहे हैं उसका हमें परिचय मिल रहा है, तो कितना उनको खुशी का पारा चढ़े। समझाने वाले का तो और ही पारा चढ़ जाए, समझने वाले का तो चढ़े ही पारा, लेकिन समझाने वाले का और पारा चढ़ जाए कि मैं भगवान का परिचय सबको दे रहा हूं। तो बेहद का बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? समझ नहीं सकते, कहते हैं ये कैसे हो सकता है। कहते ना शिव बाबा बिंदु है ये, तो कई लोग कहते ये कैसे हो सकता है। तो बेहद के बाप की जीवन कहानी हम सुनाते हैं, ये उनको कहो। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु उनकी समझानी कोई के पास भी नहीं है। सचमुच मन मना भव का अर्थ क्या है, मन मेरे में लगाओ, पर किस में लगाओ, वो तो फिर श्री कृष्ण को याद कर लेते, तो ये तो सही अर्थ नहीं हुआ ना। तो बाबा कहते हैं परंतु उनकी समझानी कोई के पास नहीं है। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं, कोई शास्त्र में ये बातें है नहीं, कोई शास्त्र में ऐसे नहीं लिखा है आत्मा ज्योति स्वरूप है, मन बुद्धि संस्कार सहित है, इस प्रकार से नहीं है। गीता में है कि आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली नहीं होती, ये है, लेकिन आत्मा है क्या चीज वो तो कोई नहीं जानते। कोई शास्त्रों में ये बातें है नहीं, भल कहते हैं आत्मा बिंदी है, भ्रकुटी के बीच एक स्टार है, परंतु यथार्थ रीति किसी की भी बुद्धि में नहीं है। वो भी जानना पड़े ना, कलयुग में है ही सब अनराइटियस, सब जो भी कहते हैं बाबा कहते हैं सब असत्य। सत्युग में है सब राइटियस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं, क्या समझते हैं, कि ये सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं। जब तप हवन तीर्थ यात्रा यहाँ ना, ये सब जो कुछ भी, ये सब ईश्वर से मिलने के रास्ते, यही कहते हैं। भगवान तो एक चोटी है, अब कोई भी रास्ता अपना लो आप चोटी तक तो पहुंच ही जाओगे, ऊपर चढ़ना है तो कोई भी रास्ते हैं। तो कई बार लोग हमको कहते तो हम कहते हैं देखो माउंट आबू आने के भी कई रास्ते हैं। पहले जमाने में तो ये रोड ही नहीं था, जो माउंट आबू का रोड है ये तो था ही नहीं, तो अंग्रेजों ने बनाया, पहले थोड़ी था। पर 1000 साल पहले ये कैसे, ये संगमरमर के पत्थर लाए और ये दिलवाड़ा मंदिर बना, हाथी घोड़ों पर लाद करके ये लाए थे ऊपर पहाड़ों पर चढ़ा करके, तो कोई ये तो था थोड़ी रास्ता। अभी देखो रास्ता बन गया है तो कौन पहाड़ों से चढ़ करके ऊपर आएगा, कोई भी नहीं आएगा, सब गाड़ी मिल जाती है सहज ऊपर चढ़ जाते हैं। तो भगवान जो ये मार्ग बताते ये सहज से सहज है। तो आप सहज चाहते हो या कठिन चाहते हो, तो कहेंगे नहीं सहज इजी, आजकल कहते ना सब इजी, हम बहुत बिजी रहते हैं तो कोई सहज मार्ग बताओ, तो ये सहज मार्ग बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो कई मनुष्य भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते ये सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं, इसलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो। जब नए आते हैं तो फॉर्म भराते, उसमें क्या लिखा रहता है, कई प्रश्न है, लेकिन अंतिम प्रश्न क्या होता है, आप यहाँ किस लक्ष्य से आए हो। तो फिर वो बताते हैं शांति के लिए आए हैं, हाँ भगवान को पहचाने आए, कई बातें लिखते हैं। तो पहले उनका फॉर्म भरवाते हो, ये यहाँ क्यों आए हैं, इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। वो जैसे कुछ कहे शांति के लिए, तो शांति कौन देगा ये फिर बताना पड़े, फिर परमात्मा का परिचय देना है। तो इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन, अब सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, बाप थोड़ी सर्वव्यापी होता है, सबका बाप कौन, ये है मुख्य बात। तो अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो, एक दो मुख्य चित्र, आज बाबा ने 3 चित्र याद किए, सीढ़ी त्रिमूर्ति झाड़, हाँ त्रिमूर्ति गोला साथ में है, तो सीढ़ी त्रिमूर्ति गोला और झाड़, ये 3 चित्र, ये बहुत जरूरी है। झाड़ में सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ, हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आते ही पीछे हैं वो तो स्वर्ग में जा न सके, उनका धर्म ही द्वापर युग से शुरू होता है या कलयुग में ही शुरू होता है, तो वो सतयुग में कैसे जाएंगे, तो स्वर्ग में जा न सके। बाकी शांति धाम में जा सकेंगे, वहां तो हर एक का अधिकार है, बाकी शांति धाम में जा सकेंगे। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है, जो जो धर्म पीछे आए हैं उनों की आत्माएं जरूर ऊपर में जाकर विराजमान होगी। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा फाउंडेशन लगाया जाता है, सारा फाउंडेशन ज्ञान का लगाया जाता है। बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, वो तो बाबा ने लगाया फाउंडेशन, यज्ञ बना तो यज्ञ बना माना फाउंडेशन लगा। तो फिर झाड़ के पत्ते तो तुमको बनाने हैं, उस समय तो 14 साल भट्टी में थी दादियां, है ना, लेकिन उसके बाद जब सेवा में निकले तो फिर धीरे धीरे बाबा के बच्चे बनते गए बढ़ते गए। तो बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग तो लगी, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते बिगड़ झाड़ होता नहीं है, कोई भी झाड़ हो और पत्ते न हो तो कैसा लगता है। तो पत्ते बिगर झाड़ होता नहीं, इसीलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए। औरों को बाबा का संदेश दो, और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते। अब ये कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ तुमको पत्ते बनाने पड़ते क्योंकि देवी देवता धर्म की आत्माएं सब भटक गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ सारी दुनिया में भटक गई है, उनको वापस लाना है देवता धर्म में। पर और धर्म वालों को ये पत्ते तैयार नहीं करने होते क्योंकि उनकी आत्माएं तो सीधी ऊपर से आती है परम धाम से। तो बाबा कहते हैं और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते हैं, वो तो ऊपर से आती है आत्माएं, फाउंडेशन लगाते हैं, धर्म पिता फाउंडेशन लगाता है, फिर आत्माएं उनके धर्म की ऊपर से आती है, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए आप पत्ते कैसे लगाते हो, ये प्रदर्शनी आदि करते हो, कितने प्रदर्शनी मेले होते रहते हैं ना, बाबा के बच्चे बनते जाते हैं तो पत्ते लगाते हैं, इससे पत्ते लगते हैं। फिर क्या होता है, अब पत्ते तो लग गए, चलो बड़ा मेला किया, बड़ा प्रोग्राम किया, उसमें से 50 बाबा के बच्चे बने, कोर्स किया, सब किया, फिर धीरे 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 क्या होता है, पत्ते छटते जाते छटते जाते, क्यों, क्योंकि धारणा पर नहीं चल सकते हैं तो फिर छटते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर तूफान आने से गिर पड़ते हैं, मुरझा जाते हैं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अब इसमें लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना और कराना है। तुम सबको कहते हो और जो भी रचना है उनको छोड़ो, और किसी भी देहधारी को याद मत करो, रचना को छोड़ो, रचना से कभी वर्षा मिल न सके, रचयिता बाप को ही याद करना है, और किसकी याद न आए, बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो बाबा की श्रीमत के खिलाफ है तो उसका बोझ सिर पर बहुत चढ़ता है। सावधान करते हैं बाबा, अगर कोई ऐसा काम करते हैं ज्ञान में आकर तो फिर उसका बोझ सिर पर बहुत चढ़ता है, पाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए, बाप की ग्लानी होती है ना, ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए। परहेज भी रखनी है, दवाई में भी परहेज रखी जाती है ना, डॉक्टर कहे ये खटाई आदि नहीं खाना है तो मानना चाहिए ना, डॉक्टर का कहना मानना चाहिए ना। कर्म इंद्रियों को वश करना पड़ता है, अगर छिपाकर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा, डॉक्टर ये भी कहते हैं दवाई भी खाओगे और फिर परहेज नहीं करोगे तो क्या असर होगा दवाई का, तो दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है दवाई, अब डॉक्टर कहता है मीठा नहीं खाना है, तुमको शुगर है, अब गुलाब जामुन देखा मुख में पानी आ गया, कोई देखता नहीं है डाल दिया मुंह में, तो बाबा कहते ये नहीं होना चाहिए ना। तो कर्म इंद्रियों को वश करना पड़ता है, अगर छिपाकर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है छिपाकर खा लिया तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है आसक्ति, लोभ, आसक्ति। तो बाप भी शिक्षा देते हैं ये नहीं करो, वो जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसे शिव बाबा भी सर्जन है, वो कहते हैं ये नहीं करो, सर्जन है ना, लिखते हैं बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं, तूफान आते हैं, तो बाबा कहते खबरदार हो, और क्या कहेंगे बाबा, खबरदार हो, गंदे स्वप्न मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, खबरदार हो। फिर बाबा कहते इनसे डरना भी नहीं है, खबरदार तो रहना पर डरना भी नहीं है, हाय ये क्यों आते हैं, हाय हाय नहीं करना है, डरना भी नहीं है, सत्युग त्रेता में तो ये बातें होती नहीं है। तुम जितना आगे नजदीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, हाँ, आगे बढ़ते जाएंगे, सिल्वर एज त्रेता युग की स्थिति तक पहुंचेंगे, तब कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी, कर्म इंद्रियां वश हो जाएगी। सत्युग त्रेता में वश थी ना, सत्युग त्रेता में सब कर्म इंद्रियां हमारी वश में थी। कई कहते हैं ना वश में नहीं होती, अरे सत्युग त्रेता में तो थी ना, याद करो उस स्थिति को, सब कर्म इंद्रियां हमारे वश में थी। सत्युग त्रेता में वश में थी ना, जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होगी। फिर सत्युग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सब कर्म इंद्रियां पूरी वश में हो जाएगी। कर्म इंद्रियां वश थी ना, नई बात थोड़ी है, हर कल्प में तुमने अपनी कर्म इंद्रियों को वश में किया है, तो इस कल्प में क्यों नहीं हो सकती। हर कर्म हर कहा बाबा कहते हो ही है, नई बात थोड़ी है। आज कर्म इंद्रियों के वश हैं, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्म इंद्रियों को वश कर लेते हैं। वो तो 84 जन्मों में उतरते आए हैं, धीरे धीरे स्थिति डाउन होती गई, 84 जन्मों में उतरते आए हैं, अभी रिटर्न जर्नी है, अब वापस उसी सतो प्रधान स्थिति तक पहुंचना है, रिटर्न जर्नी है। सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है, तो अपना चार्ट देखना है, हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। बाप को याद करते करते आयरन एज से कॉपर एज, फिर कॉपर एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्म इंद्रियां वश हो जाएगी। फिर तुमको महसूस होगा, जब कर्म इंद्रियां वश हो जाएगी तो क्या महसूस होगा, अभी कोई तूफान नहीं आते हैं, पहले जो तूफान आते थे अभी नहीं आते हैं, ये महसूस होगा। वो भी अवस्था आएगी, बाबा आश्वासन देते हैं, वो भी अवस्था आएगी, वो भी अवस्था आएगी। फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे, मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो भी आते हैं उनको समझाना है, कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं, जिसने 84 जन्म लिए हैं वही समझेंगे, कहेंगे हाँ 84 जन्म लिए हैं, वो समझेंगे। फिर वो क्या कहेंगे, अब बाप को याद कर हमको विश्व याद कर मालिक बनना है, याद कर, वो कहेंगे 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद राजाई के मालिक नहीं बने होंगे, नहीं समझते 84 जन्म तो शायद राजाई के मालिक नहीं बने होंगे। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़े हो, क्या थे कितने ऊंचे कितना नीचे गिर पड़े हो, जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। तो बाप कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र तो थे ना, अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं, और कोई भी रास्ता बता न सके सिवाय बाबा के, शिव बाबा के, भगवान के, कोई भी शांति धाम सुख धाम का रास्ता बता नहीं सकता। शांति धाम में भी पावन आत्माएं जा सकती है, जितना खाद निकलती जाएगी उतना ऊंच पद मिलेगा, जो जितना पुरुषार्थ करे। हर एक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो ना, पता तो चलता है ना हर एक क्या क्या पुरुषार्थ करता है। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है, बाबा की मदद तो बहुत मिलती है। ये तो जैसे पुराना बच्चा है, नया नया होगा पर इतना जल्दी आगे बढ़ता है, तो जैसे पुरानों से भी आगे चला गया तो लगता है ये तो जैसे पुराना बच्चा है। तो हर एक की नब्ज को समझते हो ना, सयाने जो होंगे वो झट समझ जाएंगे, हर एक की नब्ज को कौन कितना कैसा फुरशाद कर रहा है। बेहद का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, मिला था अब नहीं है, फिर मिल रहा है ना, निश्चय है ना कि फिर मिला था अब ले रहे हैं। हाँ फिर तो बाबा कहते हैं वर्षा मिला था, अब मिलना चाहिए फिर से, अब फिर मिल रहा है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तो तुम स्वर्ग के मालिक थे, बाबा याद दिला रहे हैं। फिर स्वर्ग के तो मालिक थे, फिर क्या हुआ, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो, अभी है ये तुम्हारा अंतिम जन्म। तो हिस्ट्री तो जरूर रिपीट होगी ना, तुम सारा 84 जन्मों का हिसाब बताते हो, जितना समझेंगे वो आत्माएं जितना ये ज्ञान समझती जाएंगी समझेंगे उतना बाबा कहते पत्ते बनते जाएंगे, वो पत्ते ऐड होते जाएंगे इस सैपलिंग में, उतना पत्ते बनते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो ना, तुम कहेंगे हम आए हैं, किस लिए आए हैं, हम मिशन है ना हमारी, गॉडली मिशन, ईश्वरीय मिशन, तो सबको बाप का संदेश देते हो, तो क्या कहते हो, तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने, वो तो केवल एक धर्म परिवर्तन करते, हम तो सारी दुनिया को माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं। बाप कहते हैं मैं तो सबको रावण से छुड़ाने आता हूँ। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो ना। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। परंतु ये बात सबको कैसे बताएं कि ये राजयोग भगवान ही सिखा रहे हैं, कोई मनुष्य राजयोग नहीं सिखला सकते, ये बात सबको कैसे बताएं। यहाँ तो असुरों के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं, अब कुछ को समझाने जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे अरे इनके पास नहीं जाना, ये सुरमा लगाते हैं, हाँ जादू करते, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो फिर विघ्न पड़ते हैं ना असुरों के। आगे तो समझते थे शायद कोई कीचड़ा डालते हैं, शास्त्रों में दिखाते हैं ना ऋषि लोग वो यज्ञ कर रहे हैं और ऊपर इतने बड़े बड़े असुर दिखाते, वो असुर आ करके कीचड़ा डालते उस यज्ञ में और यज्ञ को भस्म करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे कोई असुर कोई नहीं ऊपर से कीचड़ा डालेंगे, लेकिन ये मनुष्य ही है जो विघ्न डालते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे तो समझते थे शायद कोई कीचड़ा डालते हैं, अभी समझते हो ये विघ्न कैसे डालते हैं। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, हाँ ये सब लिखत में है शास्त्रों में है, नथिंग न्यू, कल्प पहले भी ये हुआ था, तो तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, तो फिर इसीलिए ये औरों को भी समझाना है, तो बाबा क्या टाइटल देते हैं औरों को समझाना है, तो बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं, लाइट हाउस बन करके सबको रास्ता बताना है, लाइट हाउस का भी टाइटल दे देते हैं, एक आंख में मुक्ति धाम दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम, है ना, तो दोनों तरफ से लाइट हाउस में लाइट जाती है, तो मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम, तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है, ये है ही दुख धाम। तो बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो उनको क्या करो, क्योंकि जो आंखों से दिखाई देते हैं ना वो भूलता नहीं है, तो परंतु बाबा कहते उसको भूलो, कहते किसी को कुछ सुनाते हैं तो चलो 50% बुद्धि में बैठेगा, परंतु अगर उनको कुछ दिखाते हैं तो वो तो 80% बैठेगा बुद्धि में, क्योंकि देखते हैं तो सबकॉन्शियसनेस में आ जाता है, खाली सुनाते हैं तो भूल भी सकते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं ना, इन आंखों से अब तुम जो कुछ देखते हो उनको भूलना है। दिखाई तो सब देगा, आंखें बंद करके तो नहीं चलना है, लेकिन क्या देखना है? नई दुनिया को देखना है, परम धाम को देखना है। तो इन सब को भूलना है, अपने शांति धाम को याद करो, आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको ही कहा जाता है केवल एक बाबा की ही याद रहे और कोई देहधारी याद न आए। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अव्यभिचारी योग, केवल एक की याद। इसको कहेंगे अव्यभिचारी योग। ज्ञान भी एक से ही सुनना है, बाबा से ही सुनना है ज्ञान, वो है अव्यभिचारी ज्ञान। एक से सुनना है बाबा की जो महावाक्य है, वही सबको सुनानी है, वही ऐसे नहीं और कुछ बातें सुनानी है और कुछ नहीं सुनाना है। इसको कहेंगे अव्यभिचारी ज्ञान, और एक को याद करना इसको कहेंगे अव्यभिचारी योग। याद भी एक को करो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। क्यों व्यर्थ संकल्प आते हैं? क्योंकि अभी तक अपने को आत्मा ही निश्चय नहीं कर पाए, तभी तो व्यर्थ संकल्प आते हैं। आत्मा समझा एक सेकंड में सब बातें और भूल जाएगी, बाबा की याद रहेगी। तो बाबा कहते हैं जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी। आत्मा क्या कहती है? मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। ये शरीर तो पुराना जड़ जड़ी भूत है, इससे भी ममत्व मिटाना है, इसमें भी ममत्व नहीं रखना है। ये ज्ञान की बात है, ऐसे नहीं कि शरीर को उसकी संभाल नहीं करनी है, ममत्व नहीं रखना है। शरीर की संभाल तो करनी ही है ना, अंदर में समझना है। क्या समझना है? शरीर की संभाल करते समय क्या समझना है? ये तो पुरानी खाल है शरीर, क्या पुरानी चमड़ी है, ये तो पुरानी खाल है, इनको तो अब छोड़ना है। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वो तो जंगल में चले जाते हैं, अब तुमको तो घर में रहते याद में रहना है। बेहद का संन्यास इसी को कहते हैं, घर में रहते बाबा को याद करना। याद में रहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तो कहां भी रहते हुए तुम ऊंच पद पालेंगे। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे, हर एक व्यक्तिगत अपने ऊपर, हर एक अपने ऊपर मेहनत करेगा उतना पद पाएंगे। इंडिविजुअल हर एक अपने ऊपर उतना पद पाएंगे। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट भी, फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है। अब ये तो बाबा ने कब मुरली चलाई थी, अभी तो कितना टाइम पड़ा होगा। कल भी हम सुन रहे थे, अखबार में पढ़ रहे थे, ट्रंप कहता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नजदीक है। थर्ड वर्ल्ड वॉर वो डराता रहता है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई वो तो थम नहीं रही है, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर को याद कर किया। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे ऊंचा। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। टाइम पड़ा है, नई दुनिया चाहिए, हम बच्चे भी तैयार हो जाने चाहिए। तब तक बाबा कहते थोड़ा टाइम पड़ा है। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े। जैसे ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था हो गई, संपूर्ण बन गए, तो सूक्ष्म वतन में हमारा इंतजार करे। घर तो नहीं गए ना, परम धाम के गेट तो सब साथ में खोलेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े। सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है। चलो थोड़े दिन रखेंगे सूक्ष्म वतन में, लेकिन फिर तो जन्म तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो तो संपूर्ण स्टेज नहीं आई है ब्रह्मा बाप जैसी, जो अभी सूक्ष्म वतन में ही रहेंगे, फिर जन्म लेना पड़ता है। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब इतना बाबा ने समझाया तो क्या होगा सार? धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। एक बाप का ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल भी रखनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। संभाल भले रखो, अभी ठंडी है तो पहनेंगे ना ठंडी के कपड़े, ऐसे थोड़ी कि नहीं 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 कोई बात नहीं, शरीर तो ऐसा ही है, नहीं भले पहनो, बाबा मना नहीं करते। हाँ, ब्रह्मा बाबा को भी बहुत ठंडी होती थी, बाबा क्लास में आते थे कमरे से, तो क्लास में आएंगे ना तो उस समय तो ये हीटर वीटर तो कुछ भी नहीं थे, तो बाबा को गोदरी पहनाते थे, हम लोग तो शॉल पहनते हैं, तो बाबा को गोदरी ओढ़ाते थे। गोदरी न राजस्थानी ये रजाई पतली होती है, तो बाबा वो पहन करके आते थे क्लास में, तो कहते थे गोदरी में करतार, वो गोदरी में बैठा है ना शिव बाबा, उस ब्रह्मातन में गोदरी पहन के आते थे। तो बाबा कहते हैं शरीर की संभाल तो करनी है, तो बाबा कहते हैं शरीर की भी संभाल रखनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। दूसरा, पाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की ग्लानी हो, पाप का खाता बने। पाप का खाता भी नहीं बनना चाहिए, बाप की ग्लानी भी नहीं करनी चाहिए, अपने को घाटे में भी नहीं डालना चाहिए। अब ये तो अपने ऊपर अटेंशन हरेक को रखना होगा। वरदान, तीन सेवाओं के बैलेंस द्वारा, कौन सी तीन सेवाएं? मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा। तो तीन सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म, ये तीन प्रकार की सेवाएं, जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं, वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है, ऐसे नहीं केवल वाचा की मार्क्स ऊंची है बाकी की नहीं है, तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर का वा गुण मूर्त बन जाते हैं। तीनों सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर वा गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुण दान सबसे बड़ा दान है। कई प्रकार के दान है ना दुनिया में, कितने प्रकार के दान है, तो अन्न दान, वस्त्र दान, भू दान, रक्त दान, नेत्र दान, सब दान है, एक एक अंग का भी दान करते हैं, लेकिन माना जाता है सबसे ऊंचा दान है ज्ञान दान, गुण दान, योग दान, ये सबसे ऊंचे दान माने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सहयोग देना ही, गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुण दान सबसे बड़ा दान है। अपने कर्मों से दान देना, गुणों द्वारा अपने कर्मों से गुण दान करना। आज का स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कैसे लगाएंगे? पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन हिसाब किताब चुकतू करावे। हाँ, कर्म भोग, लेकिन कर्म, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन हिसाब चुकतू करावे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यही है कर्मातीत स्थिति की निशानी। कर्म भोग भी है, हिसाब किताब शरीर का चुकतू भी हो रहा है, तो बाबा कहते कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, ये है कर्मातीत स्थिति की निशानी। प्रैक्टिस करो, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। कर्म योगी कर्म में आए और एकदम फिर अशरीरी बन गए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, हमारी बिन्नी बहन ने कुछ और अवार्ड लिए हैं, थोड़ा सा आपका उनका बता देते हैं और वो फिर दिखाएगी भी। हम सभी के लिए खुशी की बात है कि पंजाब के आनंदपुर साहिब में, पंजाब में आनंदपुर साहिब है, उसमें 350वे शहीद दिवस में ब्रह्मा कुमारी को विशेष आमंत्रित किया गया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी दिवस पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत मान जी द्वारा सर्व धर्म सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू से डॉक्टर बिनी बहन को अति विशिष्ट राजकीय अतिथि स्टेट गेस्ट ऑनर दे वक्ता के रूप में आमंत्रित कर सर्व धर्म गुरुओं वीवी शंकर श्री श्री रवि शंकर शंकराचार्य राधा स्वामी गुरु लोकेश जैन मुनि आदि के साथ विशेष सम्मान दिया गया। हाँ, ताली बजाएं, वो दिखाएगी। बेंगलोर में भी श्री सत्य साई बाबा के 100वे शताब्दी भव्य महोत्सव में विश्व धर्म संसद वन वर्ल्ड वन फैमिली विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भी डॉक्टर बिनी को ब्रह्मा कुमारी की तरफ से सम्मानित किया गया। बीके राकेश भाई भी सम्मान सेवा में साथ थे। तो हमारी बिन्नी बहन दिखाएंगे। हाँ, जरूर जरूर दिखा। ये आनंदपुर साहब हम भी गए थे देखने के लिए, बहुत सुंदर है वो। कहाँ? चंडीगढ़ के पास है ना आनंदपुर साहब, तो वहाँ पर बहुत सुंदर म्यूजियम है और वहाँ तेग बहादुर का भी है, मतलब बहुत कुछ बहुत अच्छा है। म्यूजियम में सब ये सारे चित्र भी हैं और काफी सारी बातें हैं। अभी डिटेल सुनाएंगे तो टाइम जाएगा, लेकिन ये आपको दिखा रहे हैं।
बेंगलोर का सत्य साई
बाबा, ये बेंगलोर में सत्य साई बाबा के वहाँ गए थे, उनकी शताब्दी थी, शताब्दी का। हाँ, दिखा दो ऐसे। यहाँ ताली बजाओ भाई। तो देखो, बाबा की सेवा भिन्न भिन्न रूप से होती है और हमारी बिंदी बहन तो हमेशा एक्टिव रहती है, सब तरफ जा सकती है, बाबा का नाम रोशन करती है। बहुत अच्छा, चलो वाह। बैठ के योग करा। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे आज।